ये आकाशवाणी है। अब आप धर्मेंद्र मणि राजेश से समाचार सुनिए। भारत और थाईलैंड ने आज सूचना प्रौद्योगिकी, समुद्री, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, हस्तशिल्प और हथकरघा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 6 समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैतोंग तारण श्रीनवात्रा के बीच बैंकॉक में द्विपक्षीय वार्ता के बाद ये समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की।
भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में थाईलैंड का विशेष स्थान है। आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। सुरक्षा एजेंसियों के बीच स्ट्रेटेजिक डायलॉग स्थापित करने पर भी चर्चा की। हमारी एजेंसीज ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ एकजुट होकर काम करेगी।
राज्यसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। लोकसभा ने कल देर रात विधेयक को पारित किया था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाकर वक्फ बोर्डों और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय को सुव्यवस्थित करना और हितधारकों के अधिकारों की रक्षा कर शासन में सुधार करना है। उन्होंने विपक्षी दलों से विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया। श्री रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वक्फ का लाभ सिर्फ मुस्लिमों को ही नहीं मिल सकता। यह सही नहीं है कि कोई गैर मुस्लिम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में हस्तक्षेप करे। उन्होंने कहा कि विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है, न कि मुसलमानों के धार्मिक व्यवहार में हस्तक्षेप करना। श्री रिजिजू ने बताया कि वक्फ बोर्ड में मुस्लिमों के सभी विभिन्न संप्रदायों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा।
हमने जो नया प्रावधान लेके है उसमें हर वक्फ बोर्ड में मुसलमानों में जो भी जो रिकॉग्नाइज्ड सेक्ट है सब मिलकर के वक्फ बनेगा। जो पिछड़े वर्ग है वो भी वक्फ बोर्ड में मेंबर होगा और आउट ऑफ 10 मुस्लिम्स 2 मेंबर्स मिनिमम शेल बी वुमेन।
कांग्रेस के सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि यह विधेयक भ्रामक है और इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के इरादे से लाया गया है। द्रविड़ मुनेत्र कझगम के तिरुचि शिवा ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा ने विधेयक की मंशा और विषय वस्तु पर सवाल उठाए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा और अमरीका द्वारा भारत पर लगाए गए जवाबी शुल्क का मुद्दा उठाया। श्री गांधी ने कहा कि यथास्थिति बनी रहनी चाहिए और भारत को उसकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। जवाबी शुल्क पर श्री गांधी ने कहा कि इस फैसले से ऑटो और दवा उद्योग के साथ साथ कृषि भी प्रभावित होगी। इसके जवाब में भाजपा के अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर डोकलाम घटना के दौरान सेना का समर्थन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने श्री गांधी पर कटाक्ष करते हुए पूछा कि किस सरकार के दौरान अक्साई चीन पर चीन ने कब्जा किया था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत सहित कई देशों पर 26% जवाबी शुल्क लगाने के फैसले के प्रभाव का विश्लेषण और आकलन किया जाएगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए उचित उपाय करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक से माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा के लिए अभियानों को रवाना किया। श्री सिंह ने पर्वतारोहियों के साहस, समर्पण और दृढ़ संकल्प की सराहना करते हुए कहा कि ये अभियान युवाओं को प्रेरित करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आज पश्चिम बंगाल के स्कूलों में 25,000 से अधिक शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया में धोखाधड़ी हुई है और इसकी विश्वसनीयता तथा वैधता खत्म हो गई है। इस प्रक्रिया में बेदाग उम्मीदवारों के लिए छूट भी दी जा सकती है। अदालत ने मानवीय आधार पर दिव्यांग कर्मचारियों के लिए छूट देते हुए कहा कि वे नौकरी में बने रहेंगे। मनीष राठौर, हितेश और अभिनाश जामवाल विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से कोलकाता में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला वर्तमान चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। गंगोत्री के कपाट भी 30 अप्रैल को ही श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।